ये हफ्तावार बाइबल का दरसीवास प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट की जानब से है जो न्यू जर्जी अमेरिका में वाक़ है। मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारी वेबसाइट मुलाहिज़ा करें www.plainfieldcs.com। ये सबक 18 जुलाई 2021 बरोज़ इतवार हफ्ता के अख्ताम पर आपके मतलब की गर्ज से तैयार किया गया है। मजमून जिंदगी सुनहरी मतन रोमियो। खुदा की बख्शिश हमारे खुदावंद यीशु मसीह में हमेशा की जिंदगी है। जवाबी मतालिया पैदाइश। जिस दिन खुदा ने आदम को पैदा किया तो उसे अपनी शबी पर बनाया, नरो नारी उनको पैदा किया और उनको बरकत दी, और हनूक 65 बरस का था जब उससे मतुसाले पैदा हुआ, और मतुसाले की पैदाइश के बाद हनूक 300 बरस तक खुदा के साथ साथ चलता रहा और उससे बेटे और बेटियां पैदा हुईं, और हनूक की कुल उम्र 365 बरस की हुई, और हनूक खुदा के साथ साथ चलता रहा और गायब हो गया क्योंकि खुदा ने उसे उठा लिया। दरसीवाज बाइबल में से सलातीन। और जब खुदावंद एलिया को बगोले में आसमान पर उठा लेने को था तो ऐसा हुआ कि एलिया अलीशा को साथ लेकर जलजाल से चला, और एलिया ने अलीशा से कहा, तू जरा यहीं ठहर जा इसलिए कि खुदावंद ने मुझे बैतेल को भेजा है। अलीशा ने कहा, खुदावंद की हयात की कसम और तेरी जान की सौगंद, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। सो वो बैतेल को चले गए, और अंबियाजादे जो बैतेल में थे अलीशा के पास आकर उससे कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि खुदावंद आज तेरे सर पर से तेरे आका को उठा लेगा। उसने कहा, हाँ मैं जानता हूँ, तुम चुप रहो। और एलिया ने उससे कहा, अलीशा तू ज़रा यहीं ठहर जा क्योंकि खुदावंद ने मुझे यरू को भेजा है। उसने कहा, खुदावंद की हयात की कसम और तेरी जान की सौगंद, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। सो वो यरूक में आए, और अंबियाजादे यरू में थे अलीशा के पास आकर उससे कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि खुदावंद आज तेरे आका को तेरे सर पर से उठा लेगा। उसने कहा, हाँ मैं जानता हूँ, तुम चुप रहो। और एलिया ने उससे कहा, तू ज़रा यहीं ठहर जा क्योंकि खुदावंद ने मुझे यरदन को भेजा है। उसने कहा, खुदावंद की हयात की कसम और तेरी जान की सौगंध, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। सो वो दोनों आगे चले, और अंबियाजादों में से 50 आदमी जाकर उनके मुकाबले दूर खड़े हो गए, और दोनों यरदन के किनारे खड़े हुए, और एलिया ने अपनी चादर को लिया और उसे लपेटकर पानी पर मारा, और पानी दो हिस्से होकर इधर उधर हो गया, और वो दोनों खुश्क जमीन पर होकर पार गए। और जब वो पार हो गए तो एलिया ने अलीशा से कहा कि इससे पेशतर मैं तुझसे ले लिया जाऊं, बता कि मैं तेरे लिए क्या करूं। अलीशा ने कहा, मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि तेरी रूह का दुगना हिस्सा मुझ पर हो। उसने कहा, तूने मुश्किल सवाल किया, तो भी अगर तू मुझे अपने से जुदा होते हुए देखे तो तेरे लिए ऐसा ही होगा, और अगर नहीं तो ऐसा ना होगा। और वो आगे चलते और बातें करते जाते थे कि देखो, एक आतशी रथ और आतशी घोड़ों ने उन दोनों को जुदा कर दिया, और एलिया बगोले में आसमान पर चला गया। अलीशा ये देखकर चिल्लाया, ऐ मेरे बाप, मेरे बाप, इसराइल के रथ और उसके सवार, और उसने उसे फिर ना देखा। सो उसने अपने कपड़ों को पकड़कर फाड़ डाला और दो हिस्से कर दिया। यूहन्ना मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव बैतेनिया का लाजर नामी एक आदमी बीमार था। यीशु ने सुनकर कहा, हमारा दोस्त लाजर सो गया है और मैं उसे जगाने जाता हूँ। बस शागिर्दों ने उससे कहा, ऐ खुदावंद, अगर सो गया है तो बच जाएगा। यीशु ने तो उसकी मौत की बाबत कहा था, मगर वो समझे कि आराम की नींद की बाबत कहा। तब यीशु ने उनसे साफ कह दिया कि लाजर मर गया, और मैं तुम्हारे सबब से खुश हूँ कि वहाँ न था, ताकि तुम ईमान लाओ, लेकिन आओ हम उसके पास चलें। बस यीशु को आकर मालूम हुआ कि उसे कब्र में रखे 4 दिन हुए। जब मरियम वहां पहुंची जहां यीशु था और उसे देखा तो उसके कदमों में गिरकर उससे कहा, ऐ खुदावंद, अगर तू यहां होता तो मेरा भाई न मरता। जब यीशु ने उसे और उन यहूदियों को जो उसके साथ आए थे रोते देखा तो दिल में नहायत रंजीदा हुआ और घबरा कर कहा, तुमने उसे कहाँ रखा है? उन्होंने कहा, ऐ खुदावंद, चल कर देख ले। यीशु फिर अपने दिल में रंजीदा होकर कब्र पर आया। वो एक गार था और उस पर पत्थर धरा था। यीशु ने कहा, पत्थर को हटाओ। उस मरे हुए शख्स की बहन मार्था ने उससे कहा, ऐ खुदावंद, उसमें से तो अब बदबू आती है क्योंकि उसे 4 दिन हो गए। यीशु ने उससे कहा, मैंने तुझसे कहा ना था कि अगर तू ईमान लाएगी तो खुदा का जलाल देखेगी। बस उन्होंने उस पत्थर को हटा दिया। फिर यीशु ने आँखें उठाकर कहा, ऐ बाप, मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली, और मुझे तो मालूम था कि तू हमेशा मेरी सुनता है, मगर इन लोगों के बायस जो आसपास खड़े हैं मैंने कहा ताकि वो ईमान लाएं कि तू ही ने मुझे भेजा है। और ये कहकर उसने बुलंद आवाज़ से पुकारा कि ऐ लाजर, निकल आ। जो मर गया था कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया और उसका चेहरा रुमाल से लिपटा हुआ था। यीशु ने उनसे कहा, इसे खोलकर जाने दो। यूहन्ना। क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। यूहन्ना। यीशु ने ये बातें कहीं और अपनी आंखें आसमान की तरफ उठाकर कहा, ऐ बाप, वो घड़ी आ पहुंची, अपने बेटे का जलाल जाहिर कर ताकि बेटा तेरा जलाल जाहिर करे। चुनाचे तूने उसे हर बशर पर इख्तियार दिया है ताकि जिन्हें तूने उसे बख्शा है उन सबको हमेशा की जिंदगी दे। और हमेशा की जिंदगी ये है कि वो तुझ खुदाए वाहद और बरहक को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। करंथियों। शुक्र खुदा का उसकी उस बख्शिश पर जो बयान से बाहर है। अब मैं मेरी बेकर रेडी की तहरीर करदा क्रिश्चियन साइंस की दरसी किताब साइंस और सेहत आयात की कुंजी के साथ में से ली गई तहरीरें पढ़ूंगा। साइंस और सेहत। जिंदगी अवधि है, हमें उसकी तलाश करनी चाहिए और उससे इजहार का आगाज करना चाहिए। जिंदगी और अच्छाई लाफानी है, तो आइए हम वजूदियत से मुतलिक हमारे ख्यालात को उम्र और खौफ की बजाय मोहब्बत, ताजगी और तवातर के साथ तश्कील दें। फानी अकीदा, जिंदगी का मादी फहम, और लाफानी सच्चाई, रूहानी फहम, कड़वे दाने और गेहूं हैं जो आगे बढ़ने से यकजा नहीं बल्कि अलग होते हैं। मादी जिंदगी के अकीदे और ख्वाब से मुकम्मल तौर पर मुनफरिद इलाही जिंदगी है जो रूहानी फहम और सारी जमीन पर इंसान की हुक्मरानी के शाऊर को जाहिर करती है। ये फहम गलती को बाहर निकालता और बीमार को शिफा देता है, और इसके साथ आप साहब इख्तियार की मानद बात कर सकते हैं। बशर को रूहानी इंसान की और उसके ख्यालात की लामहदूद वसत की बहुत नामुकम्मल समझ है। अबदी जिंदगी उससे ताल्लुक रखती है। खुदा की हुक्मरानी के तहत अबदी साइंस में कभी ना पैदा होने और कभी ना मरने से इंसान के लिए अपने बुलंद मुकाम से नीचे गिरना नामुमकिन था। रूहानी हिस की बदौलत आप अलूहियत के दिल को पहचान सकते हैं और यूं साइंस में अमूमी इस्तलाह इंसान को समझ सकते हैं। इंसान देवता से नहीं लिया गया और इंसान अपनी हस्ती को खो नहीं सकता क्योंकि वो अबदी जिंदगी की अकासी करता है, ना ही वो अलग थलग तनहा ख्याल है क्योंकि वो लामुतनाही अकल सारे मवाद के मंबा की नुमाइंदगी करता है। लामहदूद कभी शुरू नहीं हुआ और ना ये कभी ख़त्म होगा। अक़ल और इसकी अशकाल कभी फना नहीं हो सकते। इंसान बदी और अच्छाई, खुशी और दुख, बीमारी और सेहत, जिंदगी और मौत में झूलता हुआ पेंडुलम नहीं है। जिंदगी और उसकी लियाकतों को कैलेंडरों से नहीं नापा जाता। कामल और लाफानी अपने खालिक की अब्दि शवि हैं। किसी भी तरह से इंसान मादी जरसूमा नहीं जो गैर कामिल से फरोग पा रहा और जो अपनी असलियत से बुलंद रूह तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हो। नदी अपने मंबा से ऊंची नहीं बहती। शमसी साल के मुताबिक उम्र की दराजी जवानी छीन लेती और उम्र को बदसूरती फराहम करती है। सच्चाई और हकीकत का मुनव्वर सूरज हस्ती के साथ वजूदियत रखता है। जवान मर्दी इसकी अब्दि दोपहर है जो डूबते सूरज से धीमी होती जाती है। जिस्मानी और मादी की तरह खूबसूरती का आर्जी फहम धुंधला हो जाता है। रोशन और नाकाबिल तस्खीर तारीफों के साथ रूह के नूर को मसरूर फहम पर तलू होना चाहिए। उम्रों को कभी खातर में ना लाएं। तारीखी अदादोशुमार हमेशा की वसत का हिस्सा नहीं है। पैदाइश और मौत के औकातकार मर्दानगी और नस्वानियत के खिलाफ बहुत बड़ी साजिशें हैं। वो सब जो अच्छा और खूबसूरत है उसे मापने और महदूद करने की गलती के सिवाय इंसान 60 साल ज़िंदगी का ज़्यादा मज़ा लेगा और फिर भी अपनी जहनी क़ुव्वत, ताजगी और वादे को कायम रखेगा। लाफानी हुक्मरान के मातहत इंसान हमेशा खूबसूरत और अजीम होता है। हर आने वाला साल हिकमत, खूबसूरती और पाकीज़गी को अयां करता है। खौफ कभी खुद के होने और अपने कामों से रुकता नहीं। खून, दिल, फेफड़ों वगैरह का ज़िंदगी खुदा से कोई ताल्लुक नहीं है। हकीकी इंसान का हर अमल इलाही फहम की निगरानी में है। जब हमें ये एहसास होता है कि ज़िंदगी रूह है, सब कुछ खुदा यानी अच्छाई में पाते हुए और किसी दूसरे शऊर की ज़रूरत को महसूस ना करते हुए, मादे में और ना मादे से, ये फहम खुद कामलियत में कभी वसत नहीं पाएगा। यसू ने लाजर के बारे में कहा, हमारा दोस्त लाजर सो गया है और मैं उसे जगाने जाता हूँ। यसू ने लाजर को इस फहम के साथ बहाल किया कि लाजर कभी मरा नहीं था, ना कि इस बात को तस्लीम करते हुए कि उसका बदन मर गया था और वो फिर जिंदा हो गया। यसू ने कहा, यूहन्ना 8:51 आयत, अगर कोई शख्स मेरे कलाम पर अमल करे तो अब तक कभी मौत को ना देखेगा। ये बयान रूहानी जिंदगी तक महदूद नहीं बल्कि इसमें वजूदियत का करिश्मा भी शामिल है। यसू ने इसका इजहार मरने वाले को शिफा देते और मुर्दा को जिंदा करते हुए किया। फानी अकल को गलती से दूर होना चाहिए, खुद को इसके कामों से अलग रखना चाहिए, तो लाफानी जवान मर्दी मिसाली मसीह गायब हो जाएगा। मादे की बजाय रूह पर इन्हसार करते हुए ईमान को अपनी हदूद को वसी करना और अपनी बुनियाद को मजबूत करना चाहिए। जब इंसान मौत पर अपने यकीन को तर्क कर देता है, वो मजीद तेज़ी से खुदा, जिंदगी और मोहब्बत की जानब बढ़ेगा। बीमारी और मौत पर यकीन, यकीनन गुनाह पर यकीन की मानद, जिंदगी और सेहतमंदी के सच्चे फहम को बंद करने की जानब रजू करता है। इंसान कब साइंस में इस हकीकत के लिए बेदार होगा? हमसाज और गैर फानी इंसान हमेशा से मौजूद है और बतौर मादा वजूद रखते हुए किसी फानी जिंदगी, जौहर या जहानत से हमेशा बुलंद और पार रहता है। अगर मौत पर यकीन खत्म हो जाए और ये फहम उजागर हो जाए कि मौत बिल्कुल नहीं है, तो ये एक हयात का दरख्त होगा जो अपने फलों से पहचाना जाता है। इंसान को अपनी तवानाइयों और कोशिशों की तजदीद करनी चाहिए और जब वो अपनी निजात के लिए जद्दोजहद करने की ज़रूरत से मुतल्लिक सीखता है, तो उसे रियाकारी की हमाकत को देखना चाहिए। जब ये सीख लिया जाता है कि बीमारी ज़िंदगी को नेस्त नहीं कर सकती और ये कि बशर मौत के वसीला गुनाह या बीमारी से नहीं बचाए जा सकते, तो ये इदराक ज़िंदगी की जिद्दत में तेज़ी लाएगा। इससे ये मौत की ख्वाहिश या कब्र के खौफ में महारत लाएगा और यूँ ये उस बड़े डर को तबाह करेगा जो फ़ानी वजूद का घेराव करता है। मौत के यकीन और इसके डंग के खौफ का ज़िया सेहत और अखलाकियत के मेयार को इसकी मौजूदा बुलंदी से कहीं ऊँचा करेगा اور خدا ابدی زندگی پر غیر متزلزل ایمان کے ساتھ ہمیں مسیحت کے علم کو اونچا رکھنے کے قابل بنائے گا۔ گناہ موت کو لایا اور موت گناہ کے غائب ہونے پر خود بھی غائب ہو جائے گی۔ انسان لافانی ہے اور بدن ہلاک نہیں ہو سکتا، کیونکہ مادے میں سپرد کرنے کے لیے زندگی ہے ہی نہیں۔ انسانی نظریات یعنی مادہ، موت، بیماری، عارضہ اور گناہ سب وہ ہیں جنہیں فنا کیا جا سکتا ہے۔ مصنف نے نا امید عضوی بیماری کو شفا بخشی اور صرف خدا کو ہی زندگی تصور کرنے کے باعث مرنے والے کو زندہ کیا۔ یہ یقین رکھنا گناہ ہے کہ کوئی چیز قادر مطلق اور ابدی زندگی کو زیر کر سکتی ہے، اور یہ سمجھتے ہوئے کہ موت نہیں ہے اور اس کے ساتھ ساتھ روح کے دیگر فضائل کو سمجھنا زندگی میں روشنی لا سکتا ہے۔ ہمارے لیے زندگی میں جدت لاتی محسوس کرتے ہوئے اور کسی فانی یا مادی طاقت کو تباہی لانے کے قابل نہ سمجھتے ہوئے، آئیے روح کی قوت کو محسوس کریں۔ تو آئیں ہم شادمان ہوں کہ ہم ہونے والی الہی قوتوں کے تابع ہیں۔ ہستی کی حقیقی سائنس ایسی ہی ہے۔ اب میں میری بیکر ریڈی کی جانب سے چرچ مینول میں دیے گئے روزانہ کے 3 فرائض پڑھوں گا۔ روزمرہ کی دعا۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ وہ ہر روز یہ دعا کرے، تیری بادشاہی آئے، الہی حق زندگی اور محبت کی سلطنت مجھ میں قائم ہو اور سب گناہ مجھ سے خارج ہو جائیں، اور تیرا کلام سب انسانوں کی محبت کو وافر کرے اور ان پر حکومت کرے۔ مقاصد اور اعمال کا ایک اصول۔ نہ کوئی مخالفت، نہ ہی کوئی محض ذاتی وابستگی مادری چرچ کے کسی رکن کے مقاصد یا اعمال پر اثر انداز ہونے چاہیے۔ سائنس میں صرف الہی محبت حکومت کرتی ہے، اور ایک مسیح سائنسدان گناہ کو رد کرنے سے حقیقی بھائی چارے، خیرات پسندی اور معافی سے محبت کی شیریں سائشوں کی عکاسی کرتا ہے۔ اس چرچ کے تمام ارکین کو سب گناہوں سے، غلط قسم کی پیشن گوئیوں، منصفیوں، مذمتوں، اصلاحوں، غلط تاثرات کو لینے اور غلط متاثر ہونے سے آزاد رہنے کے لیے روزانہ خیال رکھنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے۔ فرض کے لیے چوکسی۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ وہ ہر روز جارحانہ ذہنی آرا کے خلاف خود کو تیار رکھے، اور خدا اور اپنے قائد اور انسانوں کے لیے اپنے فرائض کو نہ کبھی بھولے اور نہ کبھی نظر انداز کرے۔ اس کے کاموں کے باعث اس کا انصاف ہوگا، وہ بے قصور یا قصوروار ہوگا۔